بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول جولیا فائٹ گروپ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف مظہر کلیم ہیں. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 03212138225 03002919600 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. عمران نے کار جولیا کے فلیٹ کے نیچے روکی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے پر پہنچ گیا. فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی ڈرائنگ روم میں جولیا صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی. مجھے پہلے بتایا ہوتا میں کیمرہ بھی ساتھ لے آتا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے لہجے کو دانستہ سنجیدہ بنا کر کہا. اوہ آؤ بیٹھو، جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے انداز سے بیزاری اور سنجیدگی ٹپک رہی تھی. کیا ہوا؟ کیا فالج کا حملہ ہو گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا. فالج کا تو نہیں، کیوں، یہاں فالج کا کیا تعلق ہے؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی. تم اس انداز میں بیٹھی ہو جیسے حرکت کرنے سے ہی معذور ہو گئی ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں. ویسے میرے پاس فالج کا بڑا اکثری نسخہ موجود ہے، عمران نے مسکرا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. دیکھو عمران، میں نے تمہیں ایک خاص مشورے کے لیے بلایا ہے، اس لیے پلیز سنجیدگی اختیار کرو، جولیا نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا. ابھی دو گواہ بلاتا ہوں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا. اور جولیا نے پاس پڑا ہوا ہینڈ بیگ بڑے غصیلے انداز میں اٹھا کر پوری قوت سے عمران کو مارا، مگر ظاہر ہے عمران ایسے نشانوں کی زد میں کہاں آتا تھا. ارے ارے، یہ تو نسخہ تھا فالج دور کرنے کا، دیکھا اب جسم میں حرکت آ گئی ہے نا، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور جولیا نہ چاہنے کے باوجود بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئی. بس ٹھیک ہے، اب پورا فالج ختم ہو گیا ہے، لیکن تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہوا ہے؟ مجھے تو تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، عمران نے بڑے ہمدردانہ انداز میں کہا. بس تم اپنی طب بند کرو، پہلے فالج اب نروس بریک ڈاؤن، بس، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا. چلو بند کر دی، بلکہ زپ لگا دی. ویسے میرے پاس اس بیماری کا بڑا اکثری نسخہ تھا، بہرحال تمہاری مرضی، عمران نے صوفے سے پشت لگاتے ہوئے کہا. میں X2 کو چھوڑ رہی ہوں، جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد یوں کہا جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ کر رہی ہو. فوراً چھوڑ دو، اس سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ بڈھا کھوسٹ ہوگا، تبھی تو پردے میں رہتا ہے، میری خدمات حاصل ہیں، عمران نے جولیا کے توقع کے خلاف بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. تم میرا مطلب نہیں سمجھے، میں سیکرٹ سروس چھوڑنا چاہتی ہوں، جولیا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. اچھا، ویری گڈ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، دوسرے رقیب کی بھی چھٹی، میرا مطلب ہے تنویر سیکرٹ سروس میں ہی ہے نا، پھر تو میرا اسکوپ 100% بن جائے گا، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا. میں سنجیدہ ہوں عمران، جولیا نے کہا. تو میں کب رنجیدہ ہوں مس جولیا سوڈا واٹر؟ اوہ سوری، یہ میری یادداشت بھی عجیب ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں غوطہ کھا جاتی ہے، اور غوطہ بھی ایسا کہ پھر ابھرنے کا نام ہی نہیں لیتی، جو میرا خیال ہے سلاٹر ٹماٹر، مگر نہیں، عمران نے ایک ہاتھ سے پیشانی پکڑتے ہوئے کہا. جولیانا فٹنر واٹر، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ ہاں، فائٹر واٹر یعنی لڑنے والا پانی، واہ کیا خوبصورت نام ہے، انوکھا اور منفرد، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا. سنو عمران، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، چاہے X2 مجھے قتل ہی کیوں نہ کرا دے، میں اب سیکرٹ سروس میں نہیں رہ سکتی. جولیا پر ایک بار پھر سنجیدگی کا دورہ پڑ گیا تھا. تو کوئی بات نہیں، سیکرٹ سروس کو اپنے میں رکھ لو، لوگ سروس بھی کرتے ہیں، سروس کے جوتے بھی پہنتے ہیں اور سروس میں رہتے ہیں، سروس چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سروس سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، بات تو سروس کی ہی ہے نا، عمران نے جواب دیا. اور جولیا چندم سے خاموشی سے عمران کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے پاس پڑا ہوا فون کا ریسیور اٹھا لیا اور X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. اور عمران اسے اس بار واقعی حیرت سے دیکھنے لگا تھا. وہ اب تک یہی سمجھا تھا کہ شاید جولیا اسے کسی نئے انداز میں چیک کرنا چاہتی ہے، لیکن جولیا تو واقعی سنجیدہ تھی اور یہ بات کم از کم عمران کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی، لیکن وہ خاموش رہا. X2 چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز ابھری، یقیناً فون بلیک زیرو اٹینڈ کر رہا تھا۔ سر، میں جولیا بول رہی ہوں، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، جولیا نے الجھے الجھے لہجے میں کہا۔ کہو، ایکس ٹو کا لہجہ اور سرد ہو گیا۔ سر، میں سیکرٹ سروس چھوڑنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا تم نشے میں ہو جولیا؟ ایکس ٹو کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ نو سر، میں سنجیدہ ہوں، آپ چاہیں مجھے قتل کرا دیں، لیکن اب میں سیکرٹ سروس کے لیے کام نہیں کر سکتی، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن سیکرٹ سروس چھوڑنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہرحال تمہیں بھگتنا ہوگا، ایکس ٹو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران بلیک زیرو کے مضبوط اعصاب کی دل ہی دل میں داد دینے لگا کہ اس نے ذرا سی بھی حیرت ظاہر کیے بغیر وہی کچھ کہا جو اسے کہنا چاہیے تھا۔ جولیا ہاتھ میں ریسیور پکڑے بت بنی بیٹھی تھی، اور پھر ریسیور اس کے ہاتھ سے خود بخود نیچے گر گیا، اور دوسرے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران نے اسے چپ کرانے کی قطن کوشش نہیں کی، بلکہ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ یہ انسان نہیں، پتھر ہے، پتھر، سرد پتھر، اس کے لیے کسی کے جذبات، کسی کی خدمات کا کوئی صلہ نہیں، بس کام کیے جاؤ، حکم مانے جاؤ، اور پھر کسی روز مر جاؤ، لیکن یہ تو لاش بھی دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں نہیں رکھے گا، یہ ظالم ہے، ظالم پتھر، جولیا نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہا۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد جولیا خاموش ہو گئی، اس نے جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر آنکھیں صاف کی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ڈسٹلڈ واٹر ختم ہو گیا ہے، خاصا جمع ہو گیا تھا، عمران نے ایک بار پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی اسی قبیل کے آدمی ہو، مسخرے، سرد مزاج، پتھر، نکلو میرے فلیٹ سے، ابھی نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں خود کشی کر لوں گی، مر جاؤں گی، جولیا نے انتہائی غصے لہجے میں کہا، اور کسی عقاب کی طرح عمران پر جھپٹ پڑی۔ ارے ارے ارے، عمران نے دونوں ہاتھ سر کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنے آپ کو جولیا کے دو ہتھڑوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نکل جاؤ میرے فلیٹ سے، تم بھی آدمی نہیں ہو، جولیا نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ بری طرح عمران کو دھکیلنے لگی۔ ارے میری بات سنو، ارے بیٹھے بٹھائے مس، ارے، عمران نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہا۔ جولیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازے سے صفدر کی آواز سنائی دی، اور جولیا پر پڑا ہوا دورہ یا کلخت ختم ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ لو گواہ بھی آ گیا، خدا کرے ابھی دوسرا گواہ اور مولوی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ نیک نیت لوگوں کی مدد کرتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم کیسے آئے؟ جولیا نے چند لمحوں بعد صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب وہ اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ مجھے ایکس ٹو نے فون کیا تھا کہ تم سیکرٹ سروس چھوڑ رہی ہو، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو مجھے سیکرٹ سروس چھوڑنے کی سزا دینے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، مار دو گولی، جولیا نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جولیا؟ خواہ مخواہ کونین چوا رہی ہو، تم سیکرٹ سروس کی اہم اور سینئر رکن ہو، ایکس ٹو نے اپنے بعد تمہیں انچارج بنایا ہوا ہے، وہ تم پر مکمل اعتماد کرتا ہے، اور تم، صفدر نے غصے لہجے میں کہا، اور جولیا یکلق ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی نفسیاتی گرہ کھل گئی ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو پھر مجھے اس نے نظر انداز کیوں کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھ پر اب اعتماد نہیں کرتا، میں نے سیکرٹ سروس سے غداری کی تھی۔ غداری جاننے کے لیے پڑھیے مظہر کلیم کا شاہکار ناول غدار جولیا۔ لیکن تم جانتے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے دفاعی طور پر کنٹرول کر لیا گیا تھا، جولیا نے کہا۔ کیسی غداری، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سب جانتے ہیں کہ اصل چکر کیا تھا، پھر تمہارا ایسا سوچنا ہی حماقت ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر تم پر ذرا بھی غداری کا شبہ باقی رہ جاتا تو تم دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتی، صفدر نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی کیس نہیں، بالا ہی بالا کام ہو جاتے ہیں، اور میں فلیٹ میں بیٹھی مکھیاں مارتی رہتی ہوں، جولیا نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، یہ دراصل سارا قصور عمران کا ہے، میں نے خود محسوس کیا ہے کہ کئی ماہ سے یہ ہر کیس اکیلا ہی نپٹا لیتا ہے، اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب مجرم پکڑے جا چکے ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم نگرانی کرتے اور تعقب کرتے رہ جاتے ہیں، صفدر نے مسکرا کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموش بیٹھا الو کی طرح بس دیدے گھمائے چلا جا رہا تھا۔ میری بات کر رہے ہو، کمال ہے، آدمی نیکی کرے تب بھی جرم، میں نے سوچا ملک میں مکھیاں بہت ہو گئی ہیں، چلو سیکرٹ سروس کو اس دھندے سے لگا دوں، آخر یہ بھی تو خدمت ہے۔ ویسے بائی دا وے اسکور کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ इसलिए ये मुझे कह रहा था कि छोड़ दो सीक्रेट सर्विस, ये खुद गर्द और मतलबी आदमी है, इसलिए मुझे मरवाना चाहता है ताकि यही काम करता रहे। जूलिया अब इमरान पर उलट पड़ी थी। यार कुछ सोचो, गौर करो, आजकल कितनी महंगाई है। तुम्हें तो लंबी लंबी तनख्वाहें मिलती हैं, फ्लैट रिहाइश के लिए मुफ्त मिले हुए हैं, टेलीफोन फ्री, कारें मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, होटलों के बिल सीक्रेट सर्विस के खाते में और तनख्वाह सीधी बैंक में। और मैं क्या करूं? सुलेमान हर वक्त मेरी गर्दन पकड़े रहता है, खिलाओ खर्चा। सोपर फैयाज हर वक्त फ्लैट खाली कराने की धमकियां देता रहता है। पेट्रोल पंप वाले अब पेट्रोल नहीं देते, कहते हैं जितना पेट्रोल तुम उधार ले चुके हो उतनी रकम में एक नया पेट्रोल पंप चल सकता है। वर्कशॉप वाले मेरी कार को देखते ही वर्कशॉप का फाटक बंद कर देते हैं। धोबी, दर्जी, नाई, मोची, क्या क्या बताऊं, बस भाग दौड़ कर करके कुछ काम हो जाता है तो तुम्हारा चूहा छोटा सा चेक पकड़ा देता है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो जूलिया की सूरत देखने वाली हो गई। उसको शायद तसव्वुर भी ना था कि इमरान का ये हाल भी हो सकता है। उसके चेहरे पर शदीद खजालत के आसार नुमाया थे, जबकि सफदर बैठा मुस्कुराता रहा। वो इमरान की रग रग से वाकिफ था। ओह, तुम वाकई मजलूम हो। वाकई मैंने सोचा भी ना था कि तुम्हारा ये हाल है। मैं एक्स-2 से बात करती हूँ, मुझे यकीन है कि एक्स-2 तुम्हें सीक्रेट सर्विस में शामिल कर लेगा, जूलिया ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। अरे बाप रे जूलिया, खुदा के लिए मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। अरे अरे बस, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इमरान ने उछल कर फोन पर हाथ रखते हुए बौखला कर कहा। क्या मतलब, रोते भी हो और रोकते भी हो, जूलिया ने कहा। जूलिया, तुम इसे जानती हो और फिर इसके चक्कर में आ जाती हो? यह अकेला पूरी सीक्रेट सर्विस से ज्यादा कमा लेता है। सुपर फैयाज जब तक जिंदा है इसे किसी चीज की कमी नहीं है, सफदर ने हंसते हुए कहा। सुपर फैयाज? क्या मतलब, वो तो खुद भी मुलाजिम है, जूलिया ने आंखें फाड़ते हुए कहा। बस छोड़ो, तुम समझ ही नहीं सकती, सफदर ने हंसते हुए कहा। यार सफदर, कुछ मुझे ऐंठ लेने देते, जूलिया से बड़ी तनख्वाह जमा हो गई है इसकी, खामखा तुम बोल पड़े, इमरान ने बड़े शिकवा भरे लहजे में कहा। अच्छा, तो तुम मुझे ही काटने का प्रोग्राम बना रहे थे, जूलिया ने मसनू गुस्से से कहा। तुम्हें काटकर मुझे क्या मिलेगा, मैं तो पूरी का कायल हूँ, आधी तनवीर को ही मुबारक हो, इमरान ने कहा और सफदर हंस पड़ा। तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है, मैं बात कर लूँ एक्स-2 से, सफदर ने उठते हुए कहा। मैं खुद ही माफी मांगती हूँ, बस फारिग बैठे बैठे पागल हो गई थी, जूलिया ने शर्मिंदा लहजे में कहा और रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। रिसीवर उठाकर उसने एक बार फिर एक्स-2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स-2, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, लहजा वैसे ही सपाट था। सर, मैं जूलिया बोल रही हूँ, मैं माफी चाहती हूँ सर, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ सर, जूलिया ने अटकते हुए लहजे में कहा। सफदर तुम्हारे पास पहुंचा है, एक्स-2 ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय करख्त लहजे में पूछा। यस सर, मौजूद है सर, मैं शर्मिंदा हूँ सर, जूलिया ने एक बार फिर कहना शुरू किया। जूलिया, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, रिसीवर सफदर को दो, एक्स-2 ने उसे डांट दिया और जूलिया ने ढीले हाथों से रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा एक बार फिर लटक गया था। इमरान खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था, वैसे उसके जहन में एक और खिचड़ी पक रही थी। उसे जूलिया की बातों से यह एहसास हो गया था कि वाकई गुज़िश्ता कई माह से वही हर सिर फरकत में रहा है और सीक्रेट सर्विस बेकार रही है, और अब वो सीक्रेट सर्विस को दोबारा फाल बनाना चाहता था। यस सर, सफदर बोल रहा हूँ सर, मिस जूलिया नॉर्मल है सर, उन्हें दरअसल यह एहसास हो गया था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उन पर एतबार नहीं किया जा रहा। मैंने उनको समझाया तो सर बात उनकी समझ में आ गई है, वो अपने किए पर शर्मिंदा है सर, सफदर ने कहा। मगर उसे एहसास ये एहसास क्यों हुआ और कैसे, एक्स-2 ने करख्त लहजे में कहा। सर, बस खाली बैठे बैठे उसे वहम हो गया, इमरान साहब यहाँ पहले से मौजूद थे, सफदर ने जानबूझकर इमरान का नाम ले दिया ताकि उसकी जान बच जाए। इमरान वहाँ मौजूद है, रिसीवर उसे दो, एक्स-2 ने कहा और सफदर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर इमरान की जानिब बढ़ा दिया। आली जनाब, फरमाइए, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। तुम जूलिया के पास कैसे पहुंच गए, एक्स-2 ने करख्त लहजे में पूछा। मैं कार पर आया था जनाब, पेट्रोल खत्म हो गया, मैंने सोचा कि चलो जूलिया से उधार पैसे मांग लूं, मगर ये तो बैठी पहले से ही रो रही थी कि मुझे तनख्वाह कम मिलती है, गुजारा नहीं होता, मैं इस्तीफा देकर कहीं और नौकरी कर लेती हूँ, इमरान ने कहा। ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत है, मैं समझ गया हूँ, फोन जूलिया को दो, एक्स-2 ने नरम लहजे में कहा और इमरान ने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। लो, कर लो बात, अब जरा नरम पड़ गया है, तनख्वाह बढ़वा लो मगर बढ़ा हुआ हिस्सा मेरा होगा। इमरान ने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा ताकि ब्लैक जीरो सुन ले। सर मैं शर्मिंदा हूँ, तनख्वाह वाली कोई बात नहीं है सर, जूलिया ने कहा। जूलिया तुम एक अहम तरीन इदारे की सीनियर रुकन हो, तुम्हें ऐसे जज्बाती बातें जेब नहीं देती और चूंकि तुमने ये हरकत पहली बार की है इसलिए मैं खामोश रहा। अगर आइंदा तुमने इस किस्म की बातें की तो फिर नतीज दूसरे भी हो सकते हैं, मोहतात रहना, एक्सलर लहजे में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। जूलिया ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। एक्सू ने उसे सीनियर रुकन कह दिया था, बस वो इसी बात पर मुसर्रत से खिली जा रही थी। उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। अच्छा खासा मौका बन गया था तनख्वाह बढ़वाने का, मरवा दिया ना, चलो तुम्हारी मर्जी है, मेरा क्या, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, एक्सू वाला मसला तो खत्म हो गया, अब आप बताएं कि आप पर क्या जुर्माना किया जाए कि आपने हमें बेकार बनाकर रख दिया है, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बेकार क्या मतलब, एक्सटू ने तुमसे कारें छीन ली हैं, इमरान ने जानबूझकर आंखें फाड़ते हुए कहा। बस अब उड़ो नहीं, जुर्माना बताओ, सफदर ने कहा। सफदर ठीक कह रहा है, ये सब तुम्हारी शरारत है, जूलिया ने भी सफदर की तायीद की। एक मशवरा दूं मानोगे, इमरान ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। अगर मानने का हुआ तो जरूर मानूंगा, सफदर और जूलिया बैक वक्त जवाब देने लगे। क्यों ना हम एक प्राइवेट सीक्रेट सर्विस बना लें, जूलिया उसके सरबरा हो और हम सब उसके मेंबर, बस काम ही काम होगा, इमरान ने कहा। अहमक हो तुम, सीक्रेट सर्विस प्राइवेट कैसे हो सकती है, सीक्रेट सर्विस तो सरकारी कैस ही भुगता सकती है, प्राइवेट काम उसे कौन देगा, सफदर ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। तो चलो प्राइवेट नाम रख लेते हैं, गैंग कैसा रहेगा, इमरान ने फौरन ही नाम बदलते हुए कहा। गैंग, ये क्या नाम हुआ, गैंग तो मुजरिमों के होते हैं, इस बार जूलिया ने एतराज किया। फाइट गैंग रख लो, नाइट गैंग रख लो, वाह क्या खूबसूरत नाम है, जूलिया नाइट ग्रुप, इमरान ने कहा और जूलिया ने अपनी जूती उसकी जूती की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे अरे जबान फिसल जाती है, फाइट गैंग, जूलिया फाइट गैंग, इमरान ने कहा। मगर इस गैंग का मकसद, सफदर ने कहा। यार जरा रोग रहेगा, तुम्हारा क्या जाता है, चलो मेरी रोजी का धंधा बन जाएगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि बेकार बैठे रहते हो, गुंडा टैक्स भी वसूल किया करूंगा, फाइट तुम करते रहना, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, एक्स्ट्रो को पता चल गया तो शामत आ जाएगी, बाज आए हम ऐसी गैंग से, जूलिया ने कहा। एक्स्ट्रो की बात छोड़ो, उसे मैं राजी कर लूंगा और फिर उसे एतराज भी क्या हो सकता है कि गैंग तो काम ही उस वक्त करे जब फारिग होगा, इमरान ने एतमाद भरे लहजे में कहा। मगर काम क्या होगा, गुंडागर्दी करनी होगी, ये काम हमसे नहीं होता, सफदर ने कहा। काम, हाँ काम तो सोचना ही पड़ेगा, अरे आ गई बात समझ में, मैं किराए पर कत्ल कैसे रहेंगे, मोटी रकम मिलेगी, इमरान ने कहा। बस अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, सीक्रेट सर्विस अब किराए के कत्ल करती फिरेगी, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे एक आइडिया, अनोखा आइडिया, जूलिया फाइट गैंग रेसलिंग करेगा, खूब टिकटें बिकेंगी, जूलिया का मुकाबला जब किसी मशहूर पहलवान से रिंग में होगा तो बस समझो पूरा दारुल हुकूमत ही उलट पड़ेगा, 10 साल की रोटियां खड़ी हो जाएंगी, इमरान ने कहा और सफदर बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। जबकि जूलिया ने बुरा समूह बना लिया। फिर इससे पहले कि कोई बात करता टेलीफोन की घंटी बज उठी। जूलिया ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। जूलिया स्पीकिंग, जूलिया ने कहा। जूलिया फाइट गैंग का होना क्यों खामखा अपना रोग खत्म कराती हो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और जूलिया के ने गुस्से से आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा। X2, ये इमरान अभी तक तुम्हारे फ्लैट में मौजूद है, X2 की आवाज सुनाई दी। यस सर, जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। और सफदर, X2 ने पूछा। सफदर भी मौजूद है सर, जूलिया ने जवाब दिया। तुम सफदर को हमराह लेकर बंदरगाह पर पहुंचो, वहां एक मुसाफिर बहरी जहाज पहुंचने वाला है, MV3। इस जहाज पर एक मुसाफिर का हुलिया नोट कर लो, उसकी थोड़ी और दाएं गाल पर जख्म का निशान है, तुमने अलहदा रहकर उसकी निगरानी करनी है, मुकम्मल निगरानी। अगर उससे कोई मशकूक आदमी मिले तो सफदर को इस मशकूक आदमी की निगरानी पर भी लगा देना, X2 ने कहा। बेहतर सर, जूलिया ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से रब्ता खत्म होते ही जूलिया ने रिसीवर रख दिया। चलो सफदर, काम शुरू हो गया है, मेरे रोने पीटने का कुछ फायदा तो हुआ, जूलिया ने उठते हुए कहा। मेरी रोजी मारी गई और क्या फायदा हुआ, इमरान ने भी बुरा समूह बनाकर उठते हुए कहा और जूलिया मुस्कुरा दी। हाँ खुदा उसे आपकी रोजी तो सुपर फयाज है, वो तो जिंदा है, आप क्यों घबरा रहे हैं? सफदर ने हंसते हुए कहा। हाँ खुदा उसे उम्र खिजरी अता करे, वाकई फयाज वो आदमी है जिसे गरीब उसके सहारे तो जिंदा है, मगर वो फाइट गैंग वाला आइडिया उसका क्या होगा? इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब आप अपना ही गैंग बना लें, इमरान फाइट गैंग, और इसमें जुआना, जोसेफ और सुलेमान को शामिल कर लें, सफदर ने तजवीज पेश करते हुए कहा। अरे गुड आइडिया, लेकिन यार जरा निस्वानी नाम अच्छा रहता है, पब्लिसिटी जरा अच्छी हो जाती है। अच्छा सोचूंगा, फिलहाल तो जाओ अपने बोर काम करो, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता फ्लैट से बाहर चला गया। और ब्लैक जीरो का बताया हुआ हुलिया सुनकर ही वो समझ गया था कि उसने ख्वाह मखा इन दोनों को भगाया है। उसका असल मकसद इमरान को बताना था और जाहिर है, और अब बराह रास्त तो उसे बुलाने से रहा, इसलिए उसने एक आम सा हुलिया बताकर उन दोनों को भेज दिया था। ना ही इस हुलिये का आदमी होगा, ना ही निगरानी, ताए ताए फिश। उसकी कार तेज रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। अलबत्ता उसके जहन में फाइट गैंग का आइडिया आया था। उसका ख्याल था कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कोई वाजे मकसद समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये गैंग करेगा क्या? लेकिन उसने भी फैसला कर लिया था कि इस आइडिया को अमली जामा जरूर पहनाएगा, कोई ना कोई मकसद इस चीज के लिए ढूंढ ही लेगा। कुछ तो वैरायटी भी होनी चाहिए जिंदगी में, यही सोचता हुआ वो दानिश मंजिल पहुंच गया। कार बरामदे के बाहर रोक कर जब वो तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ा तो दरवाजे में ही ठिटक कर रुक गया। उसकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अनकारा के कमाल बाजार में इस वक्त रौनक अपने पूरे उरूज पर थी। हर तबके के लोग फुटपाथों पर जमे गफीर की सूरत में आ जा रहे थे। सड़क पर कारों का एक सैलाब सा आया हुआ था। हर रंग और हर मॉडल की कार उस सड़क पर नजर आ जाती थी। यूं लगता था जैसे ये बाजार न हो बल्कि कारों की नुमाइश का हो। कमाल बाजार अनकारा का सबसे बारौनक बाजार था और यहाँ ज्वेलरी की अजीम शान दुकानों के पहलू बा पहलू मिट्टी के कच्चे बर्तन बेचने की भी छोटी छोटी दुकानें मौजूद थीं। इस बाजार के मुताबिक पूरे अनकारा में मशहूर था। यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक मिल जाता है। ये बाजार 10 मील लंबाई में था। इंतहाई खुली और चौड़ी सड़क और सड़क के दोनों अतराफ में रंग बिरंगी और तेज रोशनियों से झिलमिलाती हुई हर किस्म की दुकानें, जिनके शोकेसों में लाखों रुपए का माल जगमगा रहा था। इस सड़क को काटती हुई बेशुमार गलियां थीं, जो कहलाती तो गलियां ही थीं, लेकिन सड़कों से भी ज्यादा चौड़ी थीं। इन सड़कों पर दुकानों के साथ साथ कहवे खाने, बार रूम, रेस्तरां और होटल मौजूद थे। ज्यादा तादाद बारों की थी, जिनके नीचे बने हुए तहखानों में बड़े बड़े जुए खानों के साथ साथ दुनिया भर की मनशियात और शराब खुलेआम फरोख्त की जाती थी। कमाल बाजार की मशरकी तरफ एक सड़क पर लैन यानी मोती गली कहलाती थी। कमाल बाजार की मशरकी तरफ एक सड़क पर लैन यानी मोती गली कहलाती थी। किसी जमाने में इस सड़क पर सच्चे मोती फरोख्त करने की बेशुमार दुकानें थीं, इसलिए सड़क का नाम भी पर्ल लैन ही पड़ गया। पर्ल लैन के आखिरी सिरे पर एक काफी बड़ा बार रूम था, जिसके ऊपर बार का नेविन साइन पूरी आबोताब से चमक रहा था। जैशिका बार की शोहरत इस वक्त अपने पूरे उरूज पर थी, क्योंकि इस बार में हर किस्म की शराब खुले आम फरोख्त होती थी। मनशियात का हर आइटम यहाँ फरोख्त होता था और उसके नीचे बने हुए तहखानों में आला पैमाने पर जुआ खेला जाता था। इसके साथ साथ ये बार हर किस्म के जराइम का बहुत बड़ा मरकज बना हुआ था। इस बार का मालिक अदनान बेग था, नामी ग्रामी गुंडा और बदमाश। उसने हाल ही में ये बार एक औरत जैशिका से खरीदा था। उस औरत ने ये बार अपने नाम पर बनाया हुआ था और इस वक्त इसका नाम कम ही लोग जानते थे, लेकिन जब से अदनान बेग ने ये बार खरीदा तो उसकी शोहरत पूरे अनकरा में पर लगाकर फैल चुकी थी। अदनान बेग ने बार का नाम तो ना बदला था, लेकिन उसका अंदाज बदल गया था। अदनान बेग के ताल्लुकात अनकरा के इंतहाई आला तरीन हल्कों से बहुत करीबी थे, हत्ता कि अनकरा का पुलिस कमिश्नर ताहिर बेग उसका करीबी साथी समझा जाता था। यही वजह थी कि जैशिका बार हर किस्म के छापे से महफूज था। जैशिका बार में अनकरा के मारूफ तरीन लड़ाके हर वक्त मौजूद रहते थे। उन्हें उर्फ आम में राउंड हेडेड कहा जाता था, क्योंकि ये सर से गंजे रहते थे। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हर शख्स हर वक्त खौफजदा रहता था, क्योंकि ये इंतहाई हद छोड़ बात बात पर बेदरेक कत्ल करने वाले और जालिम किस्म के लोग थे। उनके मुंह में आना लोग मौत के मुंह में आना समझते थे। उनके रोब और दबदबे का ये आलम था कि कोई राउंड हेड अगर किसी ज्वेलरी की दुकान में जाकर उसका कीमती हीरा उठाकर बाहर आ जाता तो ज्वेलर को ये हिम्मत न होती कि वो उसे रोक सके, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरे लम्हे न सिर्फ दुकान का हर शख्स कत्ल हो जाएगा बल्कि पूरी दुकान खुलेआम लूट ली जाएगी। इस तरह वो उनके खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज कराने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अव्वल तो पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेगी और अगर कुछ करेगी भी तो सही, तो पूरे अनकरा में एक शख्स ही ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके खिलाफ किसी किस्म की गवाही देने के लिए तैयार हो जाता। जैशिका बार उन्हीं राउंड हैंडेड ग्रुप का मरकज था और अदनान बेग इस पूरे ग्रुप का सरगना था। वो बहुत बड़ा स्मगलर था और ब्लैकमेलर भी। राउंड हेडेड की निशानी यही थी कि वो सर से बिल्कुल गंजे रहते थे और पेशानी पर सुर्ख रंग की पट्टी बांध कर रखते थे। उस पट्टी पर सामने एन पेशानी के दरमियान जर्द रंग का बड़ा सा बिच्छू बना हुआ था जिसकी दुम ऊपर को उठी हुई थी। इस बिच्छू की वजह से उन्हें स्कॉर्पियन भी कहा जाता था, लेकिन राउंड हेड के नाम से ये ज्यादा मशहूर थे। आमतौर पर राउंड हेड किसी को ना छेड़ते थे और ना ही किसी को बिलावजह नुकसान पहुंचाते थे। अलबत्ता अगर वो जरा सा मशकूक हो जाते तो कोई उनके खिलाफ एक फिकरा भी बोल दे तो उसकी मस्क शुदा लाश चंद घंटों के अंदर चौक पर पड़ी होती थी और इस पर राउंड हेड का बिच्छू वाला कार्ड रख दिया जाता था। आम लोगों में ये मशहूर था कि राउंड हेड ग्रुप को वजीर आजम जमाल बे की पुष्ट पनाही हासिल है और वो इस ग्रुप की मदद से अपने सियासी मुखालिफों को दबाए रखता है, और शायद यही बात सच भी थी क्योंकि अक्सर हुकूमत के मुखालफीन अपनी रिहाइशगाहों और खुले बाजारों में कत्ल कर दिए जाते थे और कातिलों का सुराग आज तक नहीं लगाया जा सका। अदनान बेग राउंड हेड ग्रुप का सरबराह जरूर था, लेकिन वो बतौर राउंड हेड कभी सामने न आया था और न ही उसने सर को गंजा कराया था, बल्कि उसके सर पर सुनहरे रंग के खूबसूरत घुंघरियाले बाल मौजूद थे। वो पसे पर्दा रहकर उन्हें कंट्रोल करता था। सिर्फ जैशिका बार में राउंड हेड ग्रुप की मौजूदगी से ये पता चलता था कि उनका ताल्लुक इसी बार से है। राउंड हेड ग्रुप का बजाहिर सरगना जमशेद नामी गुंडा था जिसे सब आका जमशेद के नाम से याद करते थे। आका जमशेद का चेहरा इस कदर भयानक और खौफजदा था कि उसका चेहरा देखते ही आदमी पर लर्जा तारी हो जाता था। बुलडॉग जैसी शक्ल सूरत रखने वाला आका जमशेद के पूरे चेहरे के पर जख्मों के कांटेदार निशानों की भरमार थी। उसकी आंखों में खौफनाक किस्म की दहशत छाई रहती थी और लोग कहते थे कि उसकी आंखों में सांप किसी चमक है। एक बार जो शख्स उसकी आंखों में झांकने की जरूरत कर लेता है फिर वो हरकत करने से माजूर हो जाता है। लड़ाई भिड़ाई के फन में उसका कोई सानी ना था। 7 फिट कद और देव जैसा ठोस और बड़ा जिस्म मुखालिफों पर लर्जा तारी कर देने के लिए काफी था। वो इंतहाई माहिर निशानेबाज माना जाता था और उसके मुतालिक मशहूर था कि अगर वो चाहे तो रिवॉल्वर की गोली से उड़ती हुई मक्खी की दो टांगों का अलहदा अलहदा निशाना ले सकता था। उसकी पेशानी पर बंधी हुई सुर्ख रंग की पट्टी पर एक के बजाय जर्द रंग के बिच्छुओं की पूरी कतार बनी हुई थी। यही उसके राउंड हेड ग्रुप के सरगना होने की निशानी थी। उसका ज्यादातर वक्त जैशिका बार में ही गुजरता था। यहाँ उसने एक आलिशान और खूबसूरत दफ्तर बनाया हुआ था जिसकी सारी दीवारें शफाफ शीशे की बनी हुई थी और ये दफ्तर जुआ खाने के बड़े हाल के कोने में बना हुआ था, लेकिन उस वक्त वो अपने दफ्तर के बजाय जैशिका बार की ऊपर वाली मंजिल में अदनान बेग के बड़े दफ्तर में मौजूद था। अदनान बेग एक बड़ी सी मेज के पीछे पड़ी हुई ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बेचैनी के आलम में बैठा हुआ था। मेज के सामने 3-4 कुर्सियां मौजूद थी जिनमें से एक पर आका जमशेद मौजूद था। बॉस, आखिर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है, कुछ पता तो चले, आका जमशेद ने करख लहजे में पूछा। वो अभी आने वाला है, तफसील तो वो आकर ही बताएगा। अलबत्ता उसने फोन पर मुझे बताया था कि हमारे लिए कोई खास परेशानी खड़ी हो गई है, अदनान बेग ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि आका जमशेद कोई बात करता दफ्तर का दरवाजा खुला और फिर अधेड़ उम्र पुलिस कमिश्नर अंदर दाखिल हुआ। उसने आम सा लिबास पहना हुआ था, अलबत्ता उसके खुश्क चेहरे पर उस वक्त गहरी परेशानी के आसार नुमाया थे। आओ ताहिर बेग, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था, अदनान बेग ने उसे देखते ही कहा। वैसे उन दोनों में से कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए नहीं उठा था बल्कि वो उसे अपने आम साथी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ, तुम अभी तो हद से बढ़ते जा रहे हो, ताहिर बेग ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा और एक कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसके अल्फाज सुनते ही आका जमशेद की पेशानी पर बल पड़ गए थे। पुलिस कमिश्नर के अल्फाज उसे सख्त नागवार गुजरे थे, लेकिन वो बॉस अदनान बेग की वजह से खामोश हो गया था और न शायद अपने हाथ को रोक नहीं सकता था। क्या हुआ, कोई खास बात हो गई है, अदनान बेग ने आगे की तरफ झुकते हुए कदरे तल्ख लहजे में पूछा। सुनो अदनान बेग, इसमें तारों को अब तुम्हें वापस करना ही होगा, अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं है, पुलिस कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा और इस्मत आरा का नाम सुनते ही अदनान बेग और आका जमशेद दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो? इस्मत आरा बेगम मेरी बीवी बन चुकी है, वो अब कैसे वापस हो सकती है? अदनान बेग ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। मैं जानता हूँ अदनान बेग कि तुमने उसे जबरन अगवा करके उससे निकाह पढ़वा लिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसको अपनी गैरत का मसला बनाए बैठे हैं। तुम्हें तो मालूम है कि इस्मत आरा उनकी सगी भतीजी है, और तुम्हारे इस तरह उसे अगवा कर लेने के चर्चे पूरे मुल्क में फैल गए हैं, पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं उसे वापस नहीं कर सकता। इस वक्त तो हरगिज वापस नहीं हो सकती जब तक वो मेरे दिल से न उतर जाए। उसके बाद मैं उसे तलाक देकर बाहर निकाल दूंगा, फिर चाहे वो जहाँ जाती फिरे, अदनान बेग ने गुस्से लहजे में कहा। अब ऐसे नहीं चलेगा अदनान बेग, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटों के अंदर इस्मत आरा वापस अपने घर पहुंच जाए, और जिसने उसे अगवा किया है, यानी दूसरे लफ्जों में अदनान बेग, उसे अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, वरना मैं अपना इस्तीफा लेकर उनके सामने जरूर हाजिर हो जाऊं। और तुम जानते हो कि वो मेरे बजाय अनकरा का पुलिस कमिश्नर किसे बनाना चाहते हैं? पुलिस कमिश्नर ने कहा। किसे बनाना चाहते हैं वो पुलिस कमिश्नर? अदनान बेग ने तल्ख लहजे में पूछा। इकबाल अकवंत को, और तुम जानते हो वो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और ताहिर बेग, मेरी बात गौर से सुन लो, और अपने वजीर आजम को भी बता दो कि वो इस्मत आरा अब अदनान बेग की बीवी बन चुकी है, और वो अब उसे भूल जाए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज तक हम उसके मुखालिफों की गर्दनें काटते रहे हैं, लेकिन उसकी गर्दन हमारे हाथों से दूर नहीं है, अदनान बेग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। जज्बात में मत आओ अदनान बेग, ये मौका जज्बात में आने का नहीं है। तुम पूरी हुकूमत की फोर्स से टक्कर नहीं ले सकते, उसका नतीजा भयानक होगा। जहाँ तक वजीर आजम की जात का ताल्लुक है, उसने अपना मुहाफिज दस्ता बदल दिया है, और आजकल मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के मंझे हुए एजेंट उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ तक इकबाल अकवंत का ताल्लुक है, वो अगर मेरी बजाय पुलिस कमिश्नर बन गया और उसे प्राइम मिनिस्टर की शह भी मिल गई, तो फिर उसका नतीजा बहरहाल तुम्हारे हक में नहीं निकलेगा, पुलिस कमिश्नर ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। बॉस, अगर आप हुक्म दें तो मैं इस इकबाल अकवंत का कांटा आज ही निकाल दूं, ताकि कम से कम ये मसला तो खत्म हो जाए, अब तक खामोश बैठे हुए आका जमशेद ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। आका जमशेद, तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है, इकबाल अकवंत अब तुम्हें बाहर नहीं मिल सकता, वो मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का सरबराह बन चुका है, पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो जाए, मैं इस मतारा को इस तरह वापस नहीं कर सकता, ये मेरी तौहीन है, अदनान बेग ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, फिर यही हो सकता है कि मैं जाकर इस्तीफा दे दूं, और उसके बाद इकबाल अकवन जाने, प्राइम मिनिस्टर जाने, और तुम जानो। मेरा जो फर्ज बनता था वो मैंने अदा कर दिया, पुलिस कमिश्नर ताहिर बेग ने सर्द लहजे में कहा, और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बैठो ताहिर बेग, इत्मीनान से बैठो, अभी 24 घंटे गुजरने में काफी वक्त बाकी है, हम इसका कोई ऐसा हल जरूर ढूंढ लेंगे जिससे मामलात खराब ना हो, अदनान बेग ने इस बार नरम लहजे में कहा, और ताहिर बेग के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए, और वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। बॉस, नरम पड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही हालात से निमट लेंगे, आका जमशेद ने गुर्राते हुए कहा। आका जमशेद, हर जगह गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलती, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अदनान बेग ने तल्ख लहजे में कहा। आका जमशेद को झाड़ते हुए कहा, और आका जमशेद बुरा समूह बनाकर खामोश हो गया। ताहिर बेग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक हफ्ते की मोहलत हासिल कर लो? एक हफ्ते बाद मैं अस्मत आरा को खुद वापस कर दूंगा, अदनान बेग ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। एक हफ्ता? क्या वाकई तुम अस्मत आरा को वापस कर दोगे? ताहिर बेग ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उसे शायद अदनान बेग की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और यही सूरत हाल आका जमशेद की भी थी। वो भी हैरत से आंखें फाड़े बॉस को देख रहा था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, वाकई एक हफ्ते बाद इस्मत आरा को वापस कर दूंगा, अदनान बेग ने ठोस लहजे में कहा। बॉस, आका जमशेद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अदनान बेग ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। ठीक है, मैं अभी वजीर आजम से बात कर लेता हूँ, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा, ताहिर बेग ने कहा, और फिर उसने तेजी से मेज पर पड़े हुए फोन को अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने लगा। अदनान बेग बैठा उसे फोन करता देख रहा था। यस, PA2 प्राइम मिनिस्टर, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी। मैं पुलिस कमिश्नर ताहिर बेग बोल रहा हूँ, साहब से बात कराएं, इट इज एमरजेंसी। ताहिर बेग ने करख लहजे में कहा, बेहतर होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और ताहिर बेग खामोश हो गया। यस ताहिर बेग, क्या बात है? चंद लम्हों बाद ही वजीर आजम जमाल बेग की सख्त आवाज सुनाई दी। सर, मैंने अदनान बेग को राजी कर लिया है, वो एक हफ्ते की मोहलत मांग रहा है क्योंकि उसने असमत आरा को किसी दूसरे मुल्क में छुपाया हुआ है, उसे वहां से लाने में एक हफ्ता जरूर लग जाएगा, पुलिस कमिश्नर ने अदनान बेग को आंख मारते हुए कहा और अदनान बेग उसकी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। यस सर, क्या तुम्हें यकीन है कि वो एक हफ्ते बाद उसे वापस कर देगा? वजीर आजम ने करफ लहजे में कहा। यस सर, मुझे पूरी तरह यकीन है कि ऐसा ही होगा, वो ऐसा शख्स है कि जो एक बार कह दे वो हतमी नहीं होता है, ताहिर बेग ने कहा। उसे तुमने ये बता दिया है कि उस पर इस्मत आरा के अगवा का बाकायदा मुकदमा चलेगा और उसे ये भी मालूम है या नहीं कि हमारे मुल्क में अगवा की सजा मौत है? जमाल बेग ने तल्ख लहजे में कहा। सर, इस सिलसिले में कुछ रियायत करनी होगी, आपको मालूम है कि इस मुकदमे का कोई फायदा नहीं होगा, पूरे अनकरा में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अदनान बेग के खिलाफ गवाही देने पर तैयार हो जाए, और आप जानते हैं कि बगैर गवाही के अदालत सजा नहीं दे सकती, इसलिए सिलसिले में अगर कोई राजीनामा हो जाए तो बेहतर है, ताहिर बेग ने कहा। ताहिर बेग, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या अब हुकूमत अदनान बेग और राउंड हेड ग्रुप के हाथों में चली गई है? मैं अगर चाहूँ तो मिलिट्री एक्शन करके 4 घंटों में उनका सफाया करा दूं, वजीर आजम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने तो रियायत का कहा था, आखिर अदनान बेग ने हुकूमत के लिए बेशुमार काम किए हैं, क्या इस सिलसिले में उससे रियायत नहीं हो सकती? सर, वैसे आप मालिक हैं, जैसा हुक्म फरमाए, ताहिर बेग ने बड़ी चालाकी से बात करते हुए कहा। ठीक है, रियायत की बात दूसरी है, असमत आरा के वापस आने पर मैं इस मसले पर गौर करूंगा, पहले कोई फायदा नहीं वादा नहीं कर सकता, वजीर आजम ने नर्म पड़ते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बस इतना ही काफी है सर, ताहिर बेग ने खुश होते हुए कहा। फिर दूसरी तरफ से रब्ता खत्म होते ही उसने रिसीवर रख दिया। लो भाई, काम बन गया, मुझे मालूम है असमत आरा की वापसी के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, ताहिर बेग ने अदनान से मुखातिब होकर कहा। ओके, एक हफ्ते बाद असमत आरा वापस अपने घर पहुंच जाएगी, बेफिक्र रहो, अदनान बेग ने सर्द लहजे में कहा। ओके, अब मुझे इजाजत दो, मैंने कुछ सरकारी काम निपटाने हैं, ताहिर बेग ने मुतमईन अंदाज में उठते हुए कहा और अदनान बेग के सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता दफ्तर से बाहर निकलता चला गया। बॉस, आखिर आपने ये वादा क्यों किया है आका जमशेद से कि ताहिर बेग के बाहर जाने के बाद? तल्ख लहजे में आका जमशेद ने कहा। सुनो जमशेद, जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ जज्बात से काम लेते हो जबकि हर मसला जज्बात से हल नहीं होता। मैंने एक हफ्ते की मोहलत मांगी है, मेरा कोई इरादा नहीं है असमत आरा को वापस करने का, अदनान ने कहा। ओह, मगर आपका प्लान क्या है? आका जमशेद ने चौंक कर सीधा होते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर जमाल बे और अकबाल अकबन दोनों का खात्मा हो जाए, इन दोनों के खात्मे के साथ ही सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, और तुम जानते हो कि हिजबे इख्तलाफ पार्टी का सेकंड लीडर मुश्तबा अजीम हमारा खास आदमी है, जमाल बे के बाद इक्तदार उसके हाथ में होगा और फिर हम और भी ज्यादा आजाद हो जाएंगे, अदनान बेग ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, आप बेफिक्र रहें, ये चाहे जमीन की तह में ही क्यों ना छुप जाएं, मैं इनका खात्मा करके ही रहूंगा, मुझे तो सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत थी, आका जमशेद ने भेड़िए की तरह दांत निकालते हुए कहा। सुनो इकबाल अकवंद और जमाल बेग का खात्मा इकट्ठा होना चाहिए, मैं मुश्तबा अजीम को होशियार कर देता हूँ ताकि वो फौरी तौर पर इख्तदार संभाल ले, अदनान बेग ने कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, हो जाएगा, आका जमशेद ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। इमरान आंखें फाड़े हैरत भरे अंदाज में ऑपरेशन रूम के दरवाजे में खड़ा देख रहा था, उसके सामने एक लड़की बैठी ब्लैक जीरो से बातें कर रही थी, उस लड़की की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की इस तरह दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में आकर बैठ सकती है। आइए इमरान साहब आइए, रुक क्यों गए? ब्लैक जीरो ने इमरान को देखते ही मुस्कुरा कर कहा और उसी लम्हे लड़की ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया, उसके तने हुए आसाब यकलक ढीले पड़ गए। ये सुरैया थी, उसकी बहन। ओह भाईजान, आप आ गए, सुरैया ने बेख्तियार कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आई, खैरियत है? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। भाईजान, अम्मी बीमार है, मैंने आपके फ्लैट पर फोन किया था, वहाँ सुलेमान ने बताया कि आप 2-3 रोज से गायब हैं, मुझे यहाँ के नंबर मालूम नहीं थे, जोसेफ का नंबर अलबत्ता मालूम था, जोसेफ से मैंने पूछा तो उसने भी लाइलमी का इजहार किया, البتہ اس نے بتایا کہ دانش مند دل سے پتہ لگ سکتا ہے، چنانچہ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر خود یہاں آ گئی تاکہ آپ کو ساتھ لے جاؤں۔ طاہر صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے آپ کو فون کیا ہے اور آپ ابھی پہنچ جائیں گے، سوریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی بار دانش مند دل آئی تھی۔ تمہیں دانش منزل کا جوزف نے بتایا ہوگا، اس سے فون پر نمبر ہی پوچھ لینے تھے، فون کر لینا تھا۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ عمران نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی حالت تو سنبھل گئی ہے، ڈاکٹر واسطی نے کہا ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن حالت سنبھلتے ہی انہوں نے آپ کو بلانے کی رٹ لگا رکھی ہے، اس لیے مجھے خود آنا پڑا، سریا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سریا بہن نے جب کال بیل بجائی تو میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بہرحال میں نے انہیں اندر بلا لیا، آپ کو فون میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ ابھی آپ پہنچنے ہی والے ہیں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ بندرگاہ والا کام تم نے اس کے ذمہ لگایا تھا؟ عمران نے جان بوجھ کر گول مول بات کی۔ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں بلیک زیرو نے سریا کے سامنے تو X2 کے لہجے میں بات نہیں کی، کیونکہ سریا کو اس سارے چکر کا علم نہ تھا، اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ عمران سیکرٹ سروس کے لیے بطور فری لانسر کام کرتا رہتا ہے۔ طاہر اور دانش منزل کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ طاہر وزارت خارجہ میں کام کرتا ہے اور دانش منزل میں وزارت خارجہ کا ریکارڈ روم اور طاہر کا دفتر ہے۔ شاہ سلطان کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران کو ڈھونڈو اور اس سے میری بات کراؤ، طاہر نے جواب دیا۔ اوہ، انکل سلطان کو میں نے ہی فون کیا تھا کہ شاید انہیں آپ کا پتا ہو، انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کر پیغام دے دیں گے، سریا نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ چلیں، ویسے یہ سرکاری دفتر ہے، یہاں تمہارا آنا ٹھیک نہیں ہے، مجھے پیغام بہرحال مل ہی جاتا، عمران نے خشک لہجے میں سریا سے مخاطب ہو کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ آئندہ سریا کبھی اس طرف کا رخ نہ کرے، وہ امی نے واویلا کر رکھا تھا بھائی جان، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، سریا نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ اب چلیں، سر سلطان کا فون آئے تو انہیں بتا دینا کہ سریا کے ساتھ گھر گیا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر سریا کو ہمراہ لیے وہ آپریشن روم کے باہر آ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار اپنی کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ بہت بڑی عمارت ہے یہ دانش منزل، سریا نے کہا۔ ہاں، وزارت خارجہ کا خفیہ ریکارڈ روم ہے، طاہر یہاں کا انچارج ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ X2 کا دفتر کہاں ہے بھائی جان؟ ابا جان اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ X2 کے لیے کام کرتے ہیں، سریا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ اس کا آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا ہے، بس آواز کی حد تک سر سلطان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، سر سلطان بھی انہیں نہیں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سریا سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد عمران کوٹھی پر پہنچ گیا۔ عمران کی والدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور عمران بھی کافی دیر ماں کے پاس بیٹھا انہیں اپنی باتوں سے ہنساتا رہا، اور پھر چائے پینے کے بعد ماں سے اجازت لے کر اٹھا تو اس نے سریا سے پوچھا۔ سریا، ڈیڈی نظر نہیں آئے، عمران نے کہا۔ ان کے کوئی دوست انقرہ سے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، سریا نے جواب دیا۔ انقرہ سے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے انقرہ میں سر رحمان کے کسی دوست کا تذکرہ نہیں سنا تھا، چنانچہ وہ باہر جانے کے بجائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا، اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کون ہے؟ اچانک سر رحمان کی کرخت آواز سنائی دی اور شاید عمران کی آہٹ وہ سن چکے تھے۔ اب عمران کے لیے اندر جانا ضروری ہو گیا تھا، وہ دروازے میں نمودار ہوا۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، قبلہ و کعبہ، مکہ و مدینہ، بیت المقدس، اوہ سوری، اور کوئی مقدس مقامات ہی یاد نہیں آ رہے، اس لیے مجبوری ہے ابا جان، عمران کی زبان اندر داخل ہوتے ہی چل پڑی۔ اور عمران نے دیکھا کہ سر رحمان کے ساتھ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر ترک بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ دفع ہو جاؤ، سر رحمان نے غصے کے لہجے میں کہا۔ کون ہے یہ رحمان صاحب؟ اس بار ادھیڑ عمر ترک نے سر رحمان سے پوچھا۔ جناب، میں قبلہ و کعبہ کا فرزند ارجمند، سکہ بند، مہر بند، عمران کی گردان ایک بار پھر چل پڑی۔ یہ میرا بیٹا عمران ہے، احمق، نالائق، سر رحمان نے خود ہی تعارف کرا دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے بیٹا کہہ کر وہ خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوں۔ عمران؟ علی عمران تو نہیں؟ ادھیڑ عمر ترک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر یکلخت جوش نمایاں ہو گیا تھا۔ جی ہاں جناب، بندے ہی کو علی عمران، خلف الرشید، سر رحمان، باورچی سلیمان، انکل سلطان اور سب مہربان سوائے سر رحمان کہتے ہیں، عمران نے جواباً رکو کے بل جھکتے ہوئے کہا، اور ادھیڑ عمر ترک یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں دنیا کی عظیم ترین شخصیت سے مل رہا ہوں، اوہ میری خوش نصیبی ہے، मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ओह इमरान, अधेड़ उम्र तुर्क ने बेख्तियार हाथ मलते हुए कहा, और फिर वो तेजी से आगे बढ़कर उसने जबरन इमरान का हाथ पकड़ा और फिर उससे बेख्तियार गले लगाना शुरू कर दिया। और अधेड़ उम्र तुर्क के इस अंदाज पर सर रहमान तो आंखें फाड़े बैठे देखते रहे। अलबत्ता इमरान खुद भी हैरान था। अजी किबला, मेरी खाल नमकीन है बल्कि कड़वी है, इमरान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, और अधेड़ उम्र तुर्क उसका हाथ छोड़कर बेख्तियार उसके गले से लिपट गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इमरान से गले मिलना दुनिया की सबसे बड़ी सआदत हो। अरे किबला, मेरा गला तो बिल्कुल ही कड़वा है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, और फिर अधेड़ उम्र तुर्क बच्चों की तरह कहकहा मार कर हंस पड़ा। आइए आइए, तशरीफ रखिए, अल्लाह रखे, मेरी खुश नसीबी सर रहमान साहब, आपने बताया ही नहीं कि आप इस कदर अजीम शख्सियत के वालिद हैं। ओह कितने खुश नसीब हैं आप। अली इमरान के वालिद, कमाल है, खुश नसीबी की इंतहा है, मेराज है। अधेड़ उम्र तुर्क उस बुरी तरह रेशा फतनी हुआ जा रहा था कि इमरान को सचमुच शर्माने लग गई और सर रहमान उसे आंखें फाड़े देखते रह गए। और अधेड़ उम्र तुर्क ने बाजू से पकड़कर इमरान को अपने साथ वाले सोफे पर बिठा लिया। ये अजीम शख्सियत, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं मुस्तफा बे, ये तो परले दर्जे का नालायक, अहमक और मसखरा है, सर रहमान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। अब्बा जान दुरुस्त फरमा रहे हैं, किबला आखिर मैं इन्हीं का बेटा हूँ, इमरान ने कहा, और अधेड़ उम्र तुर्क मुस्तफा बे खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह अच्छा, बाप बेटे में अच्छी बेतकल्लुफी है, बहुत खूब, वाकई ऐसा होना चाहिए, मुस्तफा बे ने हंसते हुए कहा। रहमान साहब तो शायद ही मेरा तारुफ कराए, मैं अपना तारुफ खुद ही करा देता हूँ। मेरा नाम मुस्तफा बे है और मैं तुर्की सीक्रेट सर्विस बॉसम का चीफ हूँ। एक जाती दौरे पर यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा कि सर रहमान से मिलता जाऊँ, हम दोनों क्लास फेल हो रहे हैं, मुस्तफा बे ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। और इमरान हैरत से मुस्तफा बे को देखने लगा जो एक बहुत बड़े मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ था। लेकिन आप इस नालायक को कैसे जानते हैं, सर रहमान ने कहा। किसे, इमरान को। अरे रहमान साहब, इन्हें कौन नहीं जानता, सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखने वाला कौन सा शख्स होगा जो इमरान को ना जानता हो। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज के अरकान का इमरान हीरो है, काबिले परस्तिश हीरो। हमारे यहाँ तो इमरान के कारनामों का हर शख्स मद्दा है, इनके अंदाज, इनके काम करने के तरीके तो हमारे यहाँ जासूसी के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं और इसे इमरान स्टाइल कहा जाता है। कमाल है, आप इनके वालिद होकर पूछ रहे हैं कि इन्हें मैं कैसे जानता हूँ, मुस्तफा बे ने इस अंदाज में कहा जैसे सर रहमान की लाइल्मी उसे पर उसे दिली अफसोस हो रहा हो। वो कोई और इमरान होगा, ये तो परले दर्जे का नालायक है, इसे तो बस यहाँ की सीक्रेट सर्विस के चीफ ने सर चढ़ा रखा है, सर रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उनके अंदाज से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो मुस्तफा बे की जबान से इमरान के इस अंदाज की तारीफ सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रहे हो लेकिन बजाहिर उसका इजहार न करना चाहते हो। अरे नहीं, इनकी गुफ्तगू के यही अंदाज तो मशहूर है, मैं भी इनके मखसूस अंदाज से इन्हें पहचानता हूँ, मुस्तफा बे ने हंसते हुए कहा। तबला मुस्तफा अलिफ तो आपके वालिद होंगे लेकिन आपके दादा क्या कहलाते होंगे, ये बात मेरी समझ नहीं आई, इमरान जो खामोश बैठा हुआ था अचानक बोल पड़ा। मुस्तफा अलिफ मेरे वालिद, मुस्तफा बे ने हैरान होते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार कहकहा मार कर हंस पड़ा। अच्छा, मैं समझ गया, बे की वजह से मेरे वालिद को अलिफ कह रहे हो और दादा तो जाहिर है खाली ही होगा, बहुत खूब, गुड जोक, मुस्तफा बे ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। और सर रहमान जैसे खुश्क आदमी भी बात समझ में आने पर बेख्तियार हंस पड़े। देखो इमरान, अगर तुम तमीज से बैठ सकते हो तो बैठ जाओ वरना दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर रहमान ने खुश लहजे में कहा। अरे नहीं रहमान साहब, खुदा की कसम, इमरान से मिलकर मेरा सिर और खून बढ़ गया है। और हाँ सर रहमान, इमरान हमारी मदद कर सकता है राउंड हेड के सिलसिले में, क्या ख्याल है, मुस्तफा बे ने चौंकते हुए कहा। नहीं ये इसका काम नहीं है, छोड़ो, सर रहमान ने इनकार करते हुए कहा। अगर अच्छे पैसे मिले और साथ ही एक विलायती उस तरह भी हो तो बे साहब आप जिसको फरमाए मैं राउंड हेड बना दूंगा, इमरान ने कहा। ओह ये बात नहीं है, किसी को गंजा नहीं करना है, बल्कि राउंड हेड एक ग्रुप है बदमाशों का, उन्होंने अनकरा में उधम मचा रखा है, किसी शरीफ आदमी की इज्जत महफूज नहीं, वो इंतहाई खौफनाक किस्म के लड़ाके हैं, हर किस्म के जराइम में मुलविस, हर किस्म के जराइम के आदि। पहले हमारे साबका वजीर आजम जमाल बे के मुतालिक कहा जाता था कि वो उनकी सरपरस्ती करते हैं, फिर वजीर आजम जमाल बे की भतीजी इसमत आरा को राउंड हेड ने अगवा कर लिया और अनकरा का पुलिस कमिश्नर ताहिर बेग राउंड हेड का खास आदमी है, वजीर आजम ने उनकी मदद से राउंड हेड पर अस्मतारा की वापसी के लिए दबाव डाला तो राउंड हेड ने एक हफ्ते की मोहलत तलब की, लेकिन एक हफ्ता गुजरने से पहले अचानक जमाल बे पर एक फंक्शन के दौरान बम फेंका गया और वो हलाक हो गए। और इसी फंक्शन में राउंड हेड का बदतरीन मुखालिफ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ इकबाल अकबंद को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इन दिनों वारदातों में राउंड हेडेड खुले आम मुलविस थे, लेकिन जमाल बे के मरते ही वजीर आजम का ओहदा मुश्तबा अजीम ने संभाल लिया है और मुश्तबा अजीम जमाल बे से भी बढ़कर राउंड हेड की सरपरस्ती कर रहा है। इसलिए अब उनकी दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई है कि खुदा की पनाह वो अनकरा के लिए दहशत बने हुए हैं, मुस्तफा बे ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो आप सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं, आप उनके खिलाफ काम क्यों नहीं करते? इमरान ने संजीदगी से पूछा। ये सवाल मुस्तफा सर रहमान ने भी किया था। दरअसल हमारे हाथ वजीर आजम ने बांध रखे हैं, उनकी सख्त तरीन हिदायत है कि हम मुकामी तौर पर किसी मसले में मुलविस ना हो, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मुस्तफा बे ने बड़ी बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत ज्यादती है। शरीफ शहरियों की जानो माल और इज्जत का तहफ़ भी इतना ही जरूरी है जितना गैर मुल्की मुजरिमों से निमटने का। अरे हाँ, मुझे याद आया, बे साहब, आपका मसला यकीनन हल हो जाएगा। वेरी गुड, लेकिन एक बात है, रकम कौन अदा करेगा? इमरान ने फिक्र का आखिरी हिस्सा अदा करते हुए मायूसी से मुंह लटका लिया। रकम? कैसी रकम? मुस्तफा बे ने कहा। एक ग्रुप है, मेरा वाकिफ है, जूलिया फाइटिंग ग्रुप। अगर वो अनकरा पहुंच जाए तो राउंड हेड का चिराग गुल हो सकता है, लेकिन वो फ्री फाइटिंग लांसर ग्रुप है, वो तो रकम मांगेगा, इमरान ने कहा। देखो इमरान, मैं बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब तुम मेरे दोस्तों को भी ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आते। दफा हो जाओ, निकल जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस बकवास को। सर रहमान ने जो अब तक खामोश बैठे हुए थे रकम की बात सुनते ही भड़क उठे। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। होटल शालीमार शाम 4 बजे जरूर मिले, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी बड़बड़ाहट ऐसी थी कि सर रहमान तो ना समझ सके, अलबत्ता मुस्तफा बे करीब होने की वजह से समझ गया और उसके सर हिलाने पर इमरान तेजी से उठा और फिर खुदा हाफिज कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। चंद लम्बों बाद उसकी गाड़ी दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। अब जूलिया फाइट गैंग का ठोस मकसद सामने आ गया था। थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गया। हेलो ब्लैक जीरो, वो जख्म के निशान वाला आदमी मिल गया जूलिया और सफदर को, इमरान ने ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही सामने बैठे ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। अरे इमरान साहब, वो तो मैंने आपको बुलाने के लिए ऐसे ही फर्जी हुलिया बताया था, लेकिन आप हैरान होंगे कि जूलिया और सफदर ने वाकई उस हुलिये का आदमी ढूंढ निकाला है, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। ढूंढ निकाला है वाकई, वाह ये खूब रही फिर, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक उभर आई थी। फिर क्या वो शख्स होटल अलास्का में ठहरा है? सफदर और जूलिया उसकी निगरानी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, लगे रहे काम से, वरना खुद ही गिला करते हैं कि काम नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। मगर वो MV3 जहाज भी वाकई बंदरगाह पर लग गया था या वो भी ब्लफ था, इमरान ने कहा। अरे नहीं, वो तो दुरुस्त था, अखबार में मुसाफिर बहरी जहाजों की आमद के औकात दर्ज थे, अखबार मेरे सामने पड़ा था, मैंने बस उसी वक्त बंदरगाह पर लगने वाले जहाज का नाम ले दिया था। अब मुझे क्या मालूम कि उस हुलिया का आदमी भी उसमें से बरामद हो जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। वो शख्स कौन है? वैसे जो हुलिया तुमने बताया है वो तो वाकई किसी मुजरिम का ही हो सकता है, इमरान ने कहा। सफदर ने भी मुझे फोन किया था, उस शख्स ने होटल में अपना नाम निकल विलियम लिखवाया है, वो यूनान का शहरी है और पेशा तिजारत है, ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि जूलिया फाइट ग्रुप के बारे में तुम्हारी क्या राय है, इमरान ने कहा। जूलिया फाइट ग्रुप? ये क्या बात हुई, कैसा ग्रुप, क्या जूलिया ने ये ग्रुप बनाया हुआ है, ब्लैक जीरो ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा। और इमरान ने जूलिया की फ्लैट में होने वाली तमाम गुफ्तगू को सुना दी। आइडिया तो अच्छा है, जरा हाथ पैर हिलते रहेंगे, लेकिन मकसद क्या होगा, क्या गुंडागर्दी करेगा ये ग्रुप, ब्लैक जीरो ने कहा। मकसद भी मिल गया है और इमरान ने मुस्तफा बे से मुलाकात और राउंड हेड ग्रुप की तफसील बता दी। अगर जूलिया फाइट ग्रुप और राउंड हेड ग्रुप का मुकाबला करा दिया जाए तो कैसा रहेगा, इस बहाने तुर्की की सैर भी हो जाएगी, इमरान ने कहा। ओह, मगर ये सरकारी काम तो नहीं हो सकता, ये तो निजी मसला रहेगा और आप जानते हैं कि इसके लिए अखराजात पर खासी रकम आ जाएगी, और ये भी तो हो सकता है कि इस दौरान यहाँ कोई काम आ जाए, फिर ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा। अखराजात का भी बंदोबस्त हो जाएगा, मुझे यकीन है मुस्तफा बे इतनी रकम पर मान जाएगा जिससे गैंग के अखराजात आसानी से पूरे हो जाएं, और बाकी रहा काम का ताल्लुक तो पूरी सीक्रेट सर्विस से जाहिर है, वहां जाने से रही चंद मेंबरों को ही भेज देंगे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब है कि आप फैसला कर चुके हैं। बहरहाल ठीक है, तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, उसके शहरी अगर इस अजाब से बच सकें तो ये अच्छा ही है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। इसके साथ साथ बस जरा शुगल ही रहेगा, कुछ हाथ पैर भी हिल जाएंगे, इमरान ने कहा। वैसे एक बात है इमरान साहब, आप बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, तब तो फाइट गैंग के लिए खासी मुश्किल बन जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे नहीं, मैं बंदोबस्त कर लूंगा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी जूलिया को कुछ नहीं होगा, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो बेअख्तियार झेप गया। आप खामोखा जूलिया को मुझ पर थोप देते हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। भाई लाडली जो हुई, उसने इस्तीफे की धमकी दी तो फौरन सफदर को भेज दिया ताकि वो उसे मना ले। मैंने कहा होता इस्तीफे का तो सफदर के बजाय गोली मुझे मनाने आती, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और ब्लैक जीरो कहकहा लगा कर हंस पड़ा। वैसे तुमने गलती की, सफदर के बजाय तनवीर को भेजा होता फिर कुछ और तमाशा होता, इमरान ने कहा। सफदर का फ्लैट नजदीक था इसलिए मैंने उसे फोन कर दिया था। मुझे जूलिया की हालत से महसूस हो रहा था कि वो खुदकुशी कर लेगी, अब मुझे क्या मालूम कि आप वहां पहले से मौजूद थे, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि इमरान कुछ कहता, मैं इस पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने कहा। सफदर बोल रहा हूँ सर, निकिल विलियम ने यहाँ गर्म मसाला बेचने वाली एक फर्म लिंडन जॉनसन एंड कंपनी के डायरेक्टर से बात की है, वो गर्म मसाले का कोई बड़ा मुआहदा उनसे करना चाहता है, शाम को होटल में मुलाकात तय हुई है। वैसे अब तक ना ही निकिल विलियम से कोई मिलने आया है और ना ही उसने किसी को फोन किया है सिवाय उस कंपनी के डायरेक्टर के, सफदर ने बड़ी संजीदगी से रिपोर्ट देते हुए कहा। जूलिया कहाँ है, इमरान ने कहा। वो सर कमरे की निगरानी में मसरूफ है, मैं एक्सचेंज में बैठा फोन चेक कर रहा हूँ, वहाँ मेरा एक दोस्त है उसकी मार्फत, सफदर ने जवाब दिया। ओके, तुम जूलिया को लेकर अपने फ्लैटों पर चले जाओ, निखिल विलियम के मुतालिक तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, फॉरन ऑफिस ने रिपोर्ट दे दी है कि वो हमारे मतलब का आदमी नहीं है, वो बस एक इत्तफाक की वजह से मशकूक हो गया था, इमरान ने बात बनाते हुए कहा। ओह ठीक है सर, मेरा भी यही आइडिया था कि वो एक बेजरर सा कारोबारी ही आदमी है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मुझे इमरान ने रिपोर्ट दे दी है कि जूलिया कोई फाइट गैंग बनाना चाहती है, इमरान ने सामने बैठे ब्लैक जीरो को आंख मारते हुए कहा। उसका लहजा हज़्ब मामूल सर्द था। ओह सर, ये बात जूलिया ने नहीं की सर, इमरान का अपना ही आइडिया था जिसे मैंने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था। जाहिर है सर, हम इस किस्म की गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते, सफदर ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। यहाँ तो वाकई नहीं हो सकती, लेकिन एक ऐसा काम आ गया है इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं तो खुद इस बारे में जूलिया को फोन करना चाहता था, इमरान ने कहा। ओह सर कैसा काम, सफदर के लहजे में हैरत थी। हमारे ब्रादर मुल्क तुर्की ने हमसे दरख्वास्त की है कि एक मसले में हम उनकी मदद करें, लेकिन चूंकि ये काम हमारे लाइन का नहीं है इसलिए मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वो मसला ऐसा गंभीर है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकार के बावजूद हम यहाँ से एक ग्रुप की सूरत में कुछ मेम्बरान को तुर्की भेजने का सोच रहे हैं। पाक एशिया के लिए ये दौरा सरकारी ही होगा, लेकिन हुकूमत तुर्की इससे लाइल्म रहेगी और उनका काम भी हो जाएगा, बाद में उन्हें आगाह किया जा सकता है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है सर, जैसा आप हुकुम फरमाए सर, सफदर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। वो शायद इस बात पर खुश हो रहा था कि X2 उससे तफसीली बातचीत कर रहा है। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर घड़ी देखते ही उठकर खड़ा हो गया। मैं मुस्तफा बे से मिल लूं और उसके बाद तफसीलात तय कर लेंगे, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो के सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। जैशिका बार की रौनकें अपने पूरे उरूज पर थीं और तौर मर्दों के मिले जुले कहकहों ने बार का वसी औरीज हॉल गूंज रहा था। काउंटर पर इस वक्त एक राउंड हेड जमाल और बड़े अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी नजरें हॉल पर जमी हुई थी कि अचानक काउंटर पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और जमाल आजर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, RH जमाल बोल रहा हूँ जैशिका बार से, जमाल आजर ने बड़े अकड़े हुए लहजे में कहा। जमशेद बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आका जमशेद की करकता आवाज सुनाई दी और जमाल आजर का अकड़ा हुआ जिस्म यूं सुकड़ता चला गया जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। यस बॉस, हुकुम फरमाए, जमाल आजर ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। मेरे दफ्तर में आओ फौरन, दूसरी तरफ से करकता आवाज में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। जमाल आजर ने बड़ी फुर्ती से रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर उछल कर वो काउंटर से बाहर आया और दूसरे लम्बे वो तकरीबन भागता हुआ तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियां उतरता चला गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अगर उसे चंद लम्हों की भी देर हो गई तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। सीढ़ियां उतर कर वो जुए खाने के हाल में पहुंचा और फिर आका जमशेद के दफ्तर का दरवाजा खोलकर वो शीशे की नॉब वाली मेज के सामने जाकर बैठ गया। हुकुम सर, जमाल आजम ने कहा। सुनो जमाल, ग्रुप नंबर 3 को लेकर फौरन कमरा नंबर 12 में मौजूद ब्लू स्काई बार में जाओ और इस बार की ईंट से ईंट बचा दो। इसकी नई मालिक ने हमारी इजाजत के बगैर ये बार खरीद लिया है और उसे उसकी मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। और सुनो, उसके मालिक को जिंदा पकड़ कर मेरे सामने ले आना ताकि उसे मैं अपने हाथ से सजा दे सकूं। आका जमशेद ने करक लहजे में कहा। उसका मालिक कौन है बॉस? जमाल अजहर ने कहा। कोई लेडी नाशूरा है और ये भी इतला है कि उसने चंद गुंडे भी वहां पाल रखे हैं। आका जमशेद ने गुस्से लहजे में कहा। ठीक है सर, हुक्म की तामील होगी सर, जमाल अजहर ने जवाब दिया और तेजी से वापस पलट कर वो हॉल से गुजरता हुआ सीढ़ियां चढ़कर एक बार फिर बाहर आ गया और चंद लम्हों बाद उसकी सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से ग्रुप नंबर 3 के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो रास्ते में आने वाले ट्रैफिक सिग्नलों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला जा रहा था और पुलिस को भी सीटी बजाने की हिम्मत न थी क्योंकि कार पर स्कॉर्पियन का मखसूस निशान मौजूद था। चंद लम्हों बाद कार एक कोठी के गेट में दाखिल होकर रुक गई और वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बरामदे में 3 राउंड हेड मौजूद थे। वो जमाल आजहर को देखते ही अटेंशन हो गए क्योंकि जमाल आजहर ही ग्रुप नंबर 3 का इंचार्ज था। इस ग्रुप में 10 राउंड हेड थे। इस तरह बेशुमार ग्रुप बनाए गए थे जिनके हेडक्वार्टर अलहदा अलहदा जगहों पर थे और हर वक्त अहकाम की तामील के लिए मुस्तैद रहते थे। पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है।